30 अप्रैल दिन मंगलवार, स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सारिका सिंह। विवादों के घेरे में राहुल गांधी, कोर्ट की अवमानना और दोहरी नागरिकता पर उठे सवाल।
जिसके सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन भी केवल वही दे सकते हैं, इसलिए बंधुओं इसमें कोई राजनीति नहीं है।
नाम नहीं काम के सहारे पूर्वी दिल्ली के मैदान में, कहना है आप उम्मीदवार अतिशी का।
पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चा काम पर होनी चाहिए बतौर नाम पर, इसलिए मैं सिर्फ आतिशी को यूज कर रही हूँ।
आज आधी रात से जापान के नए सम्राट होंगे नारुहितो। जापान के मौजूदा सम्राट ने बेटे के लिए छोड़ी राजगद्दी। बात करेंगे आयुष्मान भारत पर हो रही राजनीति की भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। सूरत सत्र न्यायालय ने आसाराम के बेटे नारायण साई को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उनके करीबी सहयोगियों गंगा, जमुना और रसोइये हनुमान को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़िता को 5,00,000 रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। सूरत की रहने वाली पीड़िता ने नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाया था। साल 2013 में दर्ज हुए मामले में अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को नारायण साई को दोषी ठहराया था। नारायण साई पर सूरत की नाबालिग लड़की का 2002 से लेकर 2005 तक बलात्कार करने का आरोप है। जापान के सम्राट अकीहितो ने तोक्यो में आयोजित एक समारोह में सिंहासन छोड़ने का ऐलान किया है। वह 2 शताब्दियों में इस तरह से खुद राजगद्दी छोड़ने वाले पहले सम्राट हैं। अब क्राउन प्रिंस नारुहितो बुधवार को गद्दी पर बैठेंगे। महल में दिए संक्षिप्त भाषण में अकीहितो ने अपने 30 साल के कार्यकाल के दौरान देश का आभार प्रकट किया। अमेरिका ने आशंका जताई है कि श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने वाले चरमपंथी अब भी आजाद घूम रहे हैं। श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत अलियाना टेपलिट्स ने कहा है कि उनके देश को लगता है कि चरमपंथी इस तरह के और हमलों को अंजाम दे सकते हैं। मैं विशेष खुफिया जानकारी या जांच से मिली सूचना के बारे में बात नहीं कर सकती, मगर लगता है कि यह चेतावनी सही है। हमें लगता है कि चुपचाप साजिश रची जा रही है। हमने अमरीकी नागरिकों को आगाह कर दिया है और बाकी लोगों को भी उन जगहों पर जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए जो आतंकवादियों का निशाना बन सकती हैं। ये थे श्रीलंका में अमरीकी राजदूत अलियाना टेपलिट्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में विपक्षी नेता खुआन गुआइदो ने देश की सेना से अपने लिए समर्थन की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके निकोलस मादुरो के शासन को अवैध बताते हुए सेना से इसे खत्म करने की अपील की। गुआइदो ने आम लोगों से ऑपरेशन फ्रीडम का आखिरी चरण शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों का महत्वपूर्ण समूह उनके साथ है। खुआन गुआइदो राजधानी कराकस में वायुसेना के एक अड्डे पर विपक्ष के एक अन्य नेता लियोपोल्ड लोपेज के साथ मौजूद थे। इस दौरान लोपेज ने कहा, राजनीतिक नाकामियों के कारण आज वेनेजुएला खराब हालत में है। यह साफ है कि वेनेजुएला के लोगों को बदलना होगा। हम जानते हैं कि यहाँ से वापस लौटने का अब कोई रास्ता नहीं। आम जनता अपने देश के सैन्य बलों के साथ मिलकर अवैध सत्ता को खत्म करेगी ताकि अस्थायी सरकार स्थापित करके स्वतंत्र चुनाव का रास्ता बहाल किया जा सके। ये थे वेनेजुएला में विपक्षी राजनेता लियोपोल्ड लोपेज के शब्द। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में ही इबोला के 90 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राहत कमेटी का कहना है कि एक दिन में तो रिकॉर्ड 27 नए मामले दर्ज किए गए थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लगभग 900 लोगों की मौत इबोला से हो चुकी है। यह इबोला का दूसरा सबसे बड़ा उभार है। कुछ साल पहले पश्चिमी अफ्रीका में इबोला से 11,000 लोगों की मौत हुई थी। सूडान में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेना बैरिकेड हटाकर उनके धरने को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मुख्य समूह सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन ने प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए नए ढांचे खड़े करने के लिए कहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं सारिका सिंह। सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जो आज कई मामलों में खबरों में रहे। कोर्ट की अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी के लिए सख्त रहा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल के दायर हलफनामे पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल कर राहुल के हलफनामे पर कहा कि वो कहीं माफी मांगते हैं तो कहीं उससे इनकार करते हैं। सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट से माफी मांगी और नया हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। अब अदालत 6 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं सुचित्र मोहंती।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अहम सुनवाई हुई, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए और ये कोर्ट को बताने की कोशिश किया कि इन्होंने रिग्रेट ही हैज ऑलरेडी रिग्रेटेड, यानी कि वो अब रिग्रेट मांग चुके हैं। लेकिन इसके बाद मुकुल रोहतगी जो लॉयर थे मीनाक्षी लेखी की तरफ से, उन्होंने ये बताया कि जो माफीनामा है वो काफी नहीं है, क्योंकि उनको पहला जो शब्द होता है वो पहले अनकंडीशनल अपोलॉजी होता है। इन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी नहीं दिया है, जबकि दो एफिडेविट फाइल कर चुके हैं राहुल गांधी। इसके लिए कोर्ट में कभी गहमागहमी रही। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हेड कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अभिषेक सिंह भी को की एक एफिडेविट फ्रेश एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है, और जिसमें अभिषेक सिंह भी को ये जरूर मेंशन करना होगा कि अपोलॉजी वर्ड लिखना होगा। राहुल गांधी ने जो रिग्रेट वर्ड लिखा था, शायद इसके ऊपर आपत्ति था मीनाक्षी लेखी को या फिर उनके लॉयर मुकुल रोहतगी को, इसीलिए शायद इस रिग्रेट के ऊपर संतुष्टि नहीं था। लास्ट हियरिंग में कोर्ट ने यह भी जताया दिया था कि आप एफिडेविट फाइल करो, इसलिए कोर्ट के एफिडेविट के फाइल के बावजूद भी नहीं हो पाए। यानी कि सिंघवी साहब को दोबारा एफिडेविट फाइल करके मंडे को फाइल करके ये करना पड़ेगा और इनको अपोलॉजी लिखना, रिग्रेट के बदले अपोलॉजी मांगना पड़ेगा।
चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी पर मानहानि के मामले को लेकर ही नहीं, उनकी नागरिकता को लेकर भी एक बार फिर सवाल उठे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कई सालों से आरोप लगाते आ रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकता की शिकायत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर वो अपनी स्थिति साफ करें। इसके लिए उन्हें 15 दिनों का वक्त दिया गया है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि
दिस पिटिशन केम अप फॉर हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन 30th of November 2015 एंड वाज डिसमिस्ड।
रणदीप सुरजेवाला बता रहे थे कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका साल 2015 में दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अब गृह मंत्रालय ये सवाल क्यों पूछ रहा है? राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सामने आई और कहा कि ये मुद्दा बेबुनियाद है।
सामने पैदा हुआ, उनके सामने बड़ा हुआ, सबको मालूम है।
गृह मंत्रालय ने इसे एक रूटीन प्रक्रिया कहा तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस पर राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए।
सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है और जिसके सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन भी केवल वही दे सकते हैं। इसलिए बंधुओं, इसमें कोई राजनीति नहीं है।
इस पूरे विवाद के कानूनी पहलू को समझने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील डॉक्टर सूरत सिंह से।
इसको लॉ में हम बोलते हैं कि जो है एक बार एक जो डिसीजन हो जाए वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में लागू होता है। तो जब एक जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया, ये चीज रिजेक्ट हो गई, तो बार बार उस चीज को इलेक्शन के टाइम उठाना सिवाय लोगों को पदभ्रमित करने के और कुछ नहीं है, और इस तरह की चीज को मैं निंदा करता हूं।
लेकिन गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर किसी ने इसको लेकर शिकायत की है तो उसकी जांच की जाती है और ये एक रूटीन प्रक्रिया है
जी।
तो कानून के सामने फिर ये मामला कहाँ ठहरता है और आगे क्या होगा?
गृह मंत्रालय ने समझदारी का काम नहीं किया है। हालांकि जो योग्य लॉयर है वो इसका जवाब भी बनाएंगे कि इशू जब 2003 का है, 2005 का है, 2009 का है, तो 2019 में कैसे उठाया जा रहा है? क्योंकि सारे अगर गृह मंत्रालय के पत्र को आप देखें तो उसमें जिक्र किया गया 2003 में आपने ये कहा, 2005 में ये कहा, 2009 में कंपनी को बंद करते वक्त आपने कहा कि आप ब्रिटिश सिटीजन हैं। तो ये 2009 की बात आप 2019 में उठा रहे हैं। ये तो कोई भी फ्रिवलस कंप्लेंट किसी के आप अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं ये कहूँ कि जो है सुब्रमण्यम स्वामी का और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्या संबंध था? बहुत से कागज हैं जो उनके फेवर में मिलेंगे, बहुत से कागज हैं उनके खिलाफ मिलेंगे। तो ये कोई बात थोड़ी, एक स्टैंडर्ड होता है पॉलिटिक्स का, किन चीजों पे डिबेट होनी चाहिए, किन चीजों पे नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजों पे वो करके राष्ट्र का समय बर्बाद किया जा रहा है, और जो मिनिस्ट्री है उसको भी ये सोचना चाहिए था। कई चीजें कॉमन सेंस की होती हैं, हर एक चीज के लिए नोटिस नहीं दिया जाता।
तो इन विवादों के अलावा खबरों में और क्या कुछ था, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं दिव्या आर्य।
सबसे पहले तो सारिका, मैं आपको एक ताज़ा खबर के बारे में बताना चाहूँगी जो अभी अभी आई है. हम अपने कार्यक्रम में बार बार बात करते रहे हैं पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न के आरोप उन्हीं के नीचे काम कर रही एक जूनियर महिला ने लगाए थे, जिसके बाद एक कमिटी बनाई गई जो अब इन आरोपों की सुनवाई कर रही है. ताज़ा जानकारी के मुताबिक उस महिला ने एक प्रेस नोट जारी किया है और कहा है कि वो इस कमेटी के सामने अब पेश नहीं होंगी. वो इस कमेटी की 3 सुनवाई में शामिल हो चुकी हैं, शुक्रवार, सोमवार और आज. और उन्होंने कहा, उन बहुत ही विस्तृत ये प्रेस नोट है जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर ये कहा है कि उन्होंने कुछ मांगे रखी थी जिसको कमेटी ने नहीं संज्ञान में लिया है. उन्होंने कहा था कि उनके साथ एक वकील होना चाहिए, उनको सुनने में दिक्कत होती है पिछले समय के ट्रॉमा की वजह से, इसलिए भी और इसलिए भी क्योंकि 3 बड़े जजेस के सामने वो हैं जो नहीं मानी गई. उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सुनवाई चल रही है उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, उसकी जो उसमें जो वो स्टेटमेंट दे रही हैं उसकी एक प्रति उन्हें दी जाए, लेकिन इस सब के बारे में उनकी बात नहीं मानी गई है. और उनको कमिटी क्या प्रक्रिया लेके चल रही है इस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है. उन्हें मीडिया पर ही इस सब के लिए रहना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है. तो आज उन्होंने एक ये चिट्ठी लिख के कमेटी से कहा है. अब कमेटी इस पर क्या कहती है, ये शायद कल हमें इस बारे में और जानकारी मिले. और चुनाव की एक खबर भी मैं साथ में बताना चाहूँगी. बहुजन समाजवादी पार्टी के इस लोकसभा चुनाव के एक उम्मीदवार के पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के फैसले से नाराज़ होकर मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि वो कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन जारी रखने पर पुनर्विचार करेंगी. उनका जिक्र मध्य प्रदेश की तरफ है. लोकेंद्र सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के गुना से सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार थे, पर सोमवार को पार्टी छोड़ कांग्रेस के ज्योतिरादित्य के साथ प्रचार करने के लिए आ गए. मायावती ने आज ट्वीट करके कहा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं. एमपी के गुना लोकसभा सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को कांग्रेस ने डरा धमकाकर जबरदस्ती बैठा दिया है, किंतु बीएसपी अपने सिंबल पर ही लड़कर इसका जवाब देगी. वो अब कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर भी पुनर्विचार करेगी. यहाँ ये बता दें कि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए, कांग्रेस के पास 113 हैं. साथ में बसपा के 2, सपा के 3 और 4 स्वतंत्र उम्मीदवार की मदद से सरकार टिकी है. अगर मायावती अपना समर्थन वापस लेती हैं, सपा भी लेती हैं, तो जाहिर है कांग्रेस के लिए मुश्किल स्थिति बनेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी वहाँ 109 सीटें हैं.
शुक्रिया दिव्या तमाम जानकारियों के लिए. और आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार इन दिनों अपने सरनेम को लेकर खूब चर्चा में हैं. क्या कहना है उनका इस बारे में, किस उम्मीदवार को मानती हैं अपने मुकाबले में, कैसे 7 सीटों के दम पर बनेगी दिल्ली पूर्ण राज्य, इन सब के बारे में उनसे बात की बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने.
हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली से आप पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी, इसके पीछे एक वजह है. हंस पड़ी हैं उम्मीदवार खुद, वो इसलिए क्योंकि इनके नाम को लेकर ही सारा कंट्रोवर्सी है. तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपको मैं क्या संबोधित करूं, अतिशी, अतिशी मरलेना, अतिशी मरलेना सिंह या अतिशी सिंह?
आप मुझे सिर्फ अतिशी के नाम से जान सकती हैं क्योंकि इसी नाम से आप मुझे पहले से भी जानती हैं और यही मेरा नाम है. मेरा पूरा नाम अतिशी मरलेना सिंह है, पर सिंह मैंने बहुत साल पहले लगाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था इस देश में कास्ट की, जात पात की, धर्म की बहुत ज़्यादा बात होती है और बहुत ज़्यादा चर्चा नाम पर होती है. तो मरलेना मेरा सेकंड नेम है, वही बस यूज़ हो रहा था. पर जब मुझे लगा कि इसकी भी बहुत ज़्यादा अब चर्चा होने लग गई है और पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि ज़्यादा चर्चा काम पर होनी चाहिए बतौर नाम पर, इसलिए मैं सिर्फ आतिशी को यूज़ कर रही हूँ.
लेकिन आपको लगा आप कामयाब हो पाई, क्योंकि अभी तो आप ही की पार्टी के मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके बोला उसका असली नाम अतिशी सिंह है, वो क्षत्राणी है, झांसी की रानी है. तो अब ये बताइए कि अतिशी क्षत्राणी है या कुछ और है?
पर ये एक फैक्ट है कि मैं एक हिंदू परिवार से आती हूँ, एक पंजाबी परिवार से आती हूँ, एक क्षत्रिय परिवार से आती हूँ, लेकिन ना मैंने कभी इसकी अपनी पॉलिटिक्स में बात करी है, ना हमारा कभी इरादा भी था इसकी बात करने का. लेकिन जब हमारे सामने के जो ओपोनेंट्स हैं और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी, क्योंकि झूठ उनकी तरफ से आ रहा है, तो इसलिए सामने आकर एक तरह से धर्म पर बात शुरू हुई, जाति पर बात शुरू हुई. वरना अगर मुझे जाति की राजनीति करनी होती तो मैं अपना नाम आतिशी सिंह लिखती. हर जगह पर मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ आतिशी है.
लेकिन मरलिना ड्रॉप करने के पीछे भी कोई राजनीति थी?
मेरे माता पिता दोनों मार्क्सवादी विचारधारा के हैं और मार्लिना जो नाम है वो मार्क्स और लेनिन के जुड़ाव से आता है।
तो ये तो हुई मार्लिना के पीछे की बात, कैसे पड़ा आपका नाम। लेकिन जब मार्लिना आपने ड्रॉप किया तो लोगों ने उसे बहुत हद तक जोड़ के देखा। पिछली बार आशुतोष जो चुनाव लड़े थे, अब नहीं है आप लोगों के साथ, उन्होंने भी गुप्ता लगा दिया था। तो एक ने जोड़ा था, एक ने ड्रॉप किया, तो पॉलिटिक्स वहीं से आपको लगता है वहीं से शुरू हुई?
देखिए, मैंने इस नाम को इसलिए तब उस समय हटाया था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी और मुझे ऐसा लगा था और मुझे आज भी इस बात पर भरोसा है कि मेरी राजनीति मेरे नाम पर, मेरे धर्म पर, मेरी जाति पर नहीं टिकी, मेरे काम पर टिकी है।
तो फिर मनीष जी ऐसा ट्वीट क्यों करते हैं कि वो छत्राणी है? क्या कहीं ना कहीं आप लोग उसको हवा नहीं देते?
देखिए, जहाँ
वो भी छत्राणी है जबकि वो ब्राह्मण थी, तो एक एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का ट्वीट,
आई थिंक जब झांसी की रानी की वो बात कर रहे थे वो तो आई थिंक एक मेटाफर की तरह से उसे यूज़ कर रहे थे।
पूर्वी दिल्ली ही क्यों आतिशी को फील्ड करने के लिए चुना गया?
देखिए, पूर्वी दिल्ली एक ऐसा दिल्ली का क्षेत्र है जो अगर आप विकास की दृष्टि से देखिए तो चाहे पुरानी सरकारें हों, पुराने सांसद हों, पूर्वी दिल्ली एक ऐसा इलाका है जो बहुत एक निग्लेक्टेड इलाका है। पहली बात
ये तो हुई चॉइस की बात, लेकिन अब ओपोनेंट्स तो आप चूज़ कर नहीं सकती। आपके अगेंस्ट में जो हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली और एक जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी कह सकते हैं आप बीजेपी की तरफ से, गौतम गंभीर हैं। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा गंभीर आप किन को ले रही हैं?
देखिए, अब कांग्रेस को तो गंभीरता से कौन ले सकता है। दिल्ली के पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने तीसरे नंबर का स्थान अपने लिए रिजर्व कर लिया है। आई थिंक उन्हें यह भी पता चल गया है कि पूर्वी दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली जी की जमानत जब्त होने वाली है।
यानी गंभीरता से आप गंभीर जी को ही ले रही
हैं? बिल्कुल ले रहे थे हम गंभीरता से गंभीर जी को, लेकिन अब उन्होंने भी अपना हिट विकेट कर लिया है। दो दो वोटर आईडी कार्ड्स के पोजीशन में है गौतम गंभीर। कोई अपना वोट किसी ऐसे कैंडिडेट को क्यों देना चाहेगा जिसका नामांकन रद्द होना तय है?
आप इसीलिए वोट मांग रहे हो ताकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके, लेकिन आप लड़ी इतने कम सीटों पर रहे हो कि लोकसभा में सत्ता में तो आ नहीं सकते आप, केंद्र में सरकार तो आप बना नहीं सकते, तो पूर्ण राज्य का दर्जा आप कैसे दिलवा पाओगे?
देखिए, इस बार सबको पता है कि मोदी जी तो वापस आ नहीं रहे हैं। इस बार बननी तो केंद्र में गठबंधन की ही सरकार है, तो हम तो सपोर्ट उसी पार्टी को देंगे, उसी सरकार को देंगे जो दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा दे।
तो नाम में क्या रखा है, कह रही थी आतिशी। और रुख करते हैं जापान का, जहां 200 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के सम्राट ने राजगद्दी छोड़ दी है। 85 साल के सम्राट ने कहा कि बढ़ती उम्र और गिरती सेहत की वजह से उन्होंने राजपाट छोड़ने का फैसला किया। अब उनकी जगह उनके बेटे युवराज नारुहितो राजगद्दी पर बैठेंगे और इसी के साथ जापान में एक नए शाही युग की शुरुआत हो जाएगी।
30 साल तक राजगद्दी संभालने के बाद जब सम्राट अकिहितो का पद से विदाई का वक्त आया तो ये प्रक्रिया पूरे रीति रिवाज के साथ शाही महल में पूरी की गई। उस वक्त महल में सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। सम्राट अकिहितो ने राजगद्दी छोड़ने की सांकेतिक जानकारी सबसे पहले राजघराने के कुल देवता और अपने पुरखों को दी। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सम्राट के पद छोड़ने की घोषणा की और उन्हें उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया। आज सम्राट के पद छोड़ने के बाद हम उन सालों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने हमारे साथ खुशी और गम साझा किया। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। सम्राट ने इस मौके पर जापान और दुनिया की शांति के लिए दुआ की। ये खुशकिस्मती की बात है कि राजगद्दी संभालने के बाद 30 सालों तक मैंने सम्राट के तौर पर पूरे भरोसे के साथ अपना फर्ज निभाया। सम्राट अकिहितो ने 1989 में राजगद्दी संभाली थी। राजगद्दी छोड़ने के बाद उन्हें जोको का खिताब दिया जाएगा जिसका अर्थ होता है चक्रवर्ती महाराज। अब उनके बेटे युवराज नारुहितो बुधवार को राजगद्दी संभाल लेंगे। वो जापान के 126वें राजा होंगे। जापान में नए राजा के राज्याभिषेक की तैयारियां भी चल रही हैं। वहां के लोगों के लिए जश्न का मौका है। इसके लिए वहां 10 दिनों की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। ये दुनिया में अकेला ऐसा राजघराना है जो पिछले 2600 सालों से लगातार जापान पर शासन करता चला रहा है। पर जापान में राजा के पास अब कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, वो एक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। पहले जापान के राजा आम जनता से शायद ही कभी मिलते थे, लेकिन सम्राट अकिहितो ने इसे बदल दिया और उन्होंने आम लोगों से भी मेलजोल रखा। विश्व युद्ध के बाद जब जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था तो उसके रुतबे को काफी ठेस पहुंची थी। जब 1989 में सम्राट अकिहितो ने राजगद्दी संभाली, तब से लेकर उन्होंने जापान की शानो शौकत को दोबारा बहाल करने के लिए बहुत कुछ किया और सफलता भी पाई।
तो जापान में शाही बदलाव के बारे में बता रही थी भूमिका राय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जिस आयुष्मान योजना को छत्तीसगढ़ में कथित रूप से बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी, अब छत्तीसगढ़ को इस योजना के लिए नंबर वन की रैंकिंग दी गई है। सुनिए इस पर आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले साल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आयुष्मान भारत की शुरुआत करते हुए दावा किया था कि इस योजना से इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद आयुष्मान भारत योजना की जगह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया। जाहिर है भाजपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना बंद कर दी गई है। इस साल 8 फरवरी को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायगढ़ पहुंचे तो उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को आड़े हाथों लिया।
रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली है। यही कारण है कि यहां की नई सरकार ने सबसे पहले आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला किया गया है। ये योजना बहुत सफलता के साथ यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान देने का काम कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सभाओं में आयुष्मान भारत योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक मरीजों को लाभ देने के लिए नंबर वन की रैंकिंग दी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक शिखा राजपूत तिवारी कहती हैं,
आयुष्मान में काम हो रहा है, हमारे क्लेम्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सितंबर तक हमारा प्रीमियम पूरा निकल आए। कोई भी केस आता है, रजिस्टर होता है और उसका एक क्लेम के लिए इनिशिएशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन में हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है वो नंबर वन है।
केंद्र सरकार के इस ताजा आंकड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के उन दावों को गलत साबित कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना को बंद कर दिए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भाजपा पर हमला बोलने का एक नया हथियार मिल गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं,
आयुष्मान योजना के आंकड़ों की जानकारी मोदी जी के स्वास्थ्य विभाग को तो है लेकिन मोदी जी को नहीं है। छत्तीसगढ़ की नवोदित कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठ बोलने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से उनको क्षमा याचना करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं,
आयुष्मान भारत योजना उसमें नंबर एक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ स्थापित होता है तो निश्चित रूप से ही अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि योजना एक बेहतर योजना है।
देर सवेर आयुष्मान योजना को बंद करने की छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा पर भी अमल होना तय है। ऐसे में लगता नहीं है कि आम जनता के स्वास्थ्य पर राजनीतिक बहस अभी बंद होगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
हमने तमाम खबरों की बात तो की पर कुछ खबरें सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करती हैं। ऐसी एक खबर ने हमारा ध्यान खींचा और वो ये कि हिमालय में विशाल पैरों के निशान मिले हैं। सेना ने यह खबर ट्वीट कर बताया तो पूरे देश के साथ साथ नेताओं की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ गई। इस बारे में हमने भी ज्यादा जानने की कोशिश की BBC संवाददाता विकास त्रिवेदी से।
सारिका जी, भारतीय सेना ने दावा किया है कि पर्वतारोहण अभियान टीम को पहली बार रहस्यमय येति यानी हिममानव के पैरों के निशान मिले हैं और ADGPI के ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें बर्फ पर एक लंबे लंबे पैरों के निशान दिख रहे हैं। सेना का दावा है कि ये मकालू बेस कैंप में 9 अप्रैल को खींची गई तस्वीरें हैं और जो पैरों के निशान हैं वो 32x15 इंच के हैं। जब से ये तस्वीरें ट्वीट की गई हैं सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर लिखा है कि BJP ज़रूर इस पर काम कर रही होगी कि कैसे हिममानवों के मुद्दे को अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करें। जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी पे जो इनकी तस्वीरें हैं उस पर चुटकियाँ ले रहे हैं क्योंकि एक पैर की तस्वीर दिख रही है, दूसरे पैर के नहीं है। तो लोग कुछ ऐसे भी लिख रहे हैं कि क्या ये लंगड़ी खेल रहे थे हिममानव। अगर हम हिममानवों के बारे में बात करें कि ये होते कौन है तो तिब्बत और नेपाल की लोकप्रिय काल्पनिक कथाओं के मुताबिक एशिया के सुदूर पर्वतीय इलाकों में दैत्याकार बंदर जैसे जीव रहते हैं जिन्हें येति या हिममानव कहा जाता है। हालांकि इस को लेकर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। कुछ रिसर्च हुई है, साल 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में ये दावा किया गया था कि हिमालय के मिथकीय हिममानव यानी येति भूरे भालुओं की ही एक उपप्रजाति हो सकते हैं। प्रोफेसर स्काइज ने बीबीसी को बताया था कि येति के मिथक के पीछे हो सकता है कि वास्तव में कोई जीव हो, पर अभी इन रिसर्च पर कोई बात नहीं कर रहा सोशल मीडिया पे। जैसे आदर्श रस्तोगी लिख रहे हैं कि आना तो मोदी को था, ये कहां से आ गया, इसका वोटर आईडी कार्ड कहां है। रुद्र लिखते हैं जरूर ये हिमानव मोदी जी को वोट करने आया होगा। एक पैरोडी अकाउंट है गब्बर सिंह के नाम से, उस पर लिखा है कि अब जब ये हिमानव के निशान मिल गए हैं तो यहाँ एक मंदिर बनाने की जरूरत है।
तो विकास, मजाक और चुटकुलों की बात अलग है, पर हमें उम्मीद है कि इसका कोई रिसर्च ज़रूर आएगा ताकि इसको फैक्ट के रूप में बताया जा सके कि आखिर निशान किसके पैर के हैं।
जी, हालांकि एक रिसर्च पहले भी की गई थी अमरीकी जीव विज्ञानी थे शॉलर्ट करके, उन्होंने एक विश्लेषण किया था और उन अवशेषों के नमूनों में हाथ, दांत, हाथ की त्वचा, बाल और मल मिले थे, तो जो तिब्बत और हिमालय वाले इलाकों से मिले थे। तो उन्होंने ये करा था और पाया था कि उनकी जांच में जो उनको मिले थे वो 100% जो अवशेष थे वो भालू के पाए गए थे।
जी, यानी अब इसके बारे में और जानकारी का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकास त्रिवेदी, और अब खेल के खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, आईपीएल में क्या कुछ चल रहा है?
जी सारिका जी, बहुत दिलचस्प स्थिति बनी हुई है आईपीएल 12 की। देखिए, आज थोड़ी देर बाद बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होगी, जहां से ताज़ा समाचार यह है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और टॉस के समय जब विराट कोहली से पूछा गया कि टॉस को लेकर आप क्या कहेंगे, बोले कि ये किस तरह से ज़मीन पर गिरकर किसके पक्ष में जाता है, इसका जादू उन्हें नहीं आता। क्योंकि देखिए, इस बार 13 में से 8 टॉस में विराट कोहली हारे, और आईपीएल ऐसे मुकाबले हैं जहां टॉस पर भी कई मैचों का फैसला हो जाता है। जैसे पिछली बार दिल्ली में टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां दूसरी पारी में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। 16 रन से विराट कोहली की टीम वो मैच हारी थी, और यही वो मैच था जिसके बाद से तमाम तरह के अगर मगर किंतु परंतु विराट कोहली की टीम के लिए समाप्त हो गए कि प्ले ऑफ में ये पहुँचेगी या नहीं। लेकिन ये तमाम किंतु परंतु अभी राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 12 मैचों में 5 जीत के बाद 10 अंक हैं, उसके 7वें नंबर पर है हालांकि, लेकिन उसके जो 2 मुकाबले बाकी हैं, अगर वो जीत जाती है तो और किसी तरह से रन रेट भी ठीक रहता है तो फिर वो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। हालांकि निश्चित रूप से कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि 10 के अंक पर 3 टीमें अटकी हुई है, और कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह की जीत हासिल की उसके बाद उसके 12 अंक हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं, वार्नर तो कल अपनी टीम को जिताकर ऑस्ट्रेलिया चले गए क्योंकि विश्व कप की तैयारी करनी है। आज यही स्थिति स्टीव स्मिथ के लिए है जो राजस्थान के कप्तान है, वो इस आईपीएल का आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इस मैच में, क्रिकेट पंडितों की नज़र सिर्फ इस बात पर है कि क्या राजस्थान आज का मुकाबला जीतकर किसी तरह से इस दौड़ में शामिल हो सकती है कि वो अंतिम 4 में पहुंचे या नहीं। इसके अलावा कोई दिलचस्पी इस मुकाबले में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्या विराट कोहली की टीम बचे हुए 2 मैच जीतकर अपना कुछ सम्मान बचा पाएगी या नहीं, और इस मुकाबले में नज़र रहेगी राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे पर, क्योंकि जब स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो कप्तानी की बागडोर एक बार फिर से उनके हाथ में आएगी। संजू सैमसन से इस टीम को उम्मीदें रहेगी, लेकिन अंत में फिर एक बार फिर से लाख % का सवाल कि क्या राजस्थान रॉयल्स जीत पाती है या नहीं।
जी, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आपका। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी के साथ।
सूरत सत्र न्यायालय ने आसाराम के बेटे नारायण साई को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उनके करीबी सहयोगियों गंगा, जमुना और रसोइये हनुमान को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। जापान के सम्राट अकीहितो ने टोक्यो में आयोजित एक समारोह में सिंहासन छोड़ने का ऐलान किया है। वह 2 शताब्दियों में इस तरह से खुद राजगद्दी छोड़ने वाले पहले सम्राट हैं। अमरीका ने आशंका जताई है कि श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने वाले चरमपंथी अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। वेनेजुएला में विपक्षी नेता खुआन गुआइदो ने देश की सेना से अपने लिए समर्थन की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके निकोलस मादुरो के शासन को अवैध बताते हुए सेना से इसे खत्म करने की अपील की। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। तो अब सारिका सिंह को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।